डैनियल की पुस्तक क्रमांक 157। दानियल की पुस्तक में कुरूश के भविष्यवाणी पर प्रतीकवाद का अनावरण।
10वें अध्याय के पहले पद में हमें बताया गया है कि वो कुरूश का तीसरा वर्ष था, परंतु पहले अध्याय में हमें बताया गया है कि दानियल केवल कुरूश के पहले वर्ष तक ही जीवित रहा या उसी तक बना रहा।
और दानियल राजा कुरूश के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियल 1:3।
2 वर्षों तक कुरूश ने वास्तव में मादी दारियूस के साथ सहशासन किया था, इसलिए ये उसका तीसरा वर्ष था, पर ये उसका पहला वर्ष भी था।
फारस के राजा कुरूश के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जिसका नाम बेल्तशस्सर रखा गया था, एक बात प्रकट की गई, और वो बात सत्य थी, परंतु नियत समय बहुत लंबा था, और उसने उस बात को समझ लिया और उस दर्शन का अर्थ भी समझ लिया। दानियल 10:21।
भविष्य सूचक रूप में कुरूश का परिचय दानियल के प्रथम और अंतिम दर्शनों में कराया गया है। दानियल अध्याय 1, जैसा कि पूर्ववर्ती लेखों में पहले ही प्रस्तुत किया गया है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के प्रथम स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करता है। जब भविष्यवाणी में प्रथम स्वर्गदूत की पहचान की जाती है, तो उसमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के तीनों स्वर्गदूतों की सभी भविष्य सूचक विशेषताएं समाहित होती हैं। प्रथम स्वर्गदूत में प्रदर्शित अनंत सुसमाचार के 3 चरण हैं। परमेश्वर का भय मानो, उसे महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है।
क्योंकि दानियल और उसके तीनों योग्य साथियों ने परमेश्वर का भय माना, इसलिए उन्होंने बाबुल के आहार को अस्वीकार करना और शाकाहारी बने रहना चुना। इसके बाद हुए दृश्य परीक्षण में दानियल और उन तीनों योग्य साथियों ने बाबुल का आहार खाने वालों की अपेक्षा अपने स्वस्थ स्वरूप के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। 3 वर्षों के बाद न्याय का समय आया, जब नबूकदनेस्सर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें सब बाबुली बुद्धिमानों से 10 गुना अधिक बुद्धिमान पाया।
अनंत सुसमाचार के 3 चरण दानियल की पुस्तक के अंतिम अध्याय में भी इस प्रक्रिया के रूप में दर्शाए गए हैं कि ध्यान की वृद्धि उन लोगों को शुद्ध करती है, धवल बनाती है और परखती है, जिन्हें उस प्रकाश के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है जो समय के अंत में मुहर खोले जाने पर प्रकट होता है। दानियल के पहले अध्याय में भी, जैसे अंतिम में, पहले स्वर्गदूत के 3 चरण जो तीनों स्वर्गदूतों को समाहित करते हैं पहचाने जाते हैं। क्योंकि पहला अध्याय पहले स्वर्गदूत का अनंत सुसमाचार है, इसलिए दानियल का 2रा अध्याय प्रकाशित वाक्य 14 के 2रे स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करता है, जहां पशु की प्रतिमा या मसीह की प्रतिमा की परीक्षा दर्शाई गई है, जैसा कि पहले अध्याय के 3 चरणों की 2री परीक्षा में था।
क्योंकि दानियल के अध्याय 1 और 2 प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 कि पहले और 2रे स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए 3रा अध्याय और दूरा के मैदान की परीक्षा 3रे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पशु की छाप कुरहण न करने की चेतावनी है। दानियल के पहले अध्याय में कुरूश के प्रथम वर्ष का उल्लेख है और 10वें अध्याय में, जो दानियल का अंतिम दर्शन है, कुरूश को उसके 3रे वर्ष द्वारा दर्शाया गया है। पर हम जानते हैं कि वो 3रे वर्ष ही उसका प्रथम वर्ष है, क्योंकि दानियल केवल कुरूश के प्रथम वर्ष तक ही जारी रहा, इसलिए कुरूश 3 वर्षों को समेटे हुए पहले वर्ष का प्रतीक है। वो पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतीक है। कुरूश के पहले वर्ष का उल्लेख दानियल के पहले दर्शन के अंतिम पद में और फिर दानियल के अंतिम दर्शन के पहले पद में किया गया है। कुरूश के भविष्यद्वाणिक प्रतीकवाद को पहचानना महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले हम ये पहचान रहे हैं कि वो पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भविष्यद्वाणिक दृष्टि से इस तथ्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है कि दानियल उसके 3रे वर्ष को उसका पहला बताता है, परंतु इससे भी अधिक ये उस पहले फरमान से पहचाना जाता है जिसे उसने जारी किया था।
10वें अध्याय में फारस के राजाओं के साथ जो संघर्ष गब्रील कर रहा था, वो कुरैश को उस बिंदु तक ले आने के संबंध में था जहां वो आगे बढ़कर 3 फरमानों में से पहले फरमान की घोषणा करे, जिसके द्वारा यहूदियों को लौटने और यरूशलेम तथा मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मिलती। 3रा फरमान
2300 वर्ष की भविष्यवाणी के आरंभ को चिह्नित करता, जिसका अंत तब हुआ जब तीसरा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1844 को आया। तीसरा फरमान तीसरे स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करता था और इसलिए कुरैश का पहला फरमान 1798 में प्रथम स्वर्गदूत के आगमन का प्रतिनिधित्व करता था। कुरैश प्रथम स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करता है और इसी कारण दानियल की पुस्तक में उसका पहला वर्ष 3 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता था। अतः साइरस अंत समय का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जब पहला स्वर्गदूत साइरस 1897 में आया तभी अंत का समय आया और दानियल की पुस्तक की मुहर खोल दी गई। साइरस नाम के बारे में माना जाता है कि ये पुरानी फारसी शब्द कुरुश अर्थ सूर्य और एलामाइट शब्द कुरुश अर्थ सिंहासन से व्युत्पन्न है, जो राजसत्ता या राजत्व से संबंध का संकेत देता है। यशाया भी साइरस के इन गुणों का उल्लेख करता है।
जो कुरुश के विषय में कहता है, वो मेरा चरवाहा है और वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वो यरूशलेम से कहेगा, तू बनाई जाएगी और मंदिर से तेरी नींव डाली जाएगी। यहोवा अपने अभिषिक्त कुरुश से यूं कहता है, जिसका दाहिना हाथ मैंने थाम रखा है, उसके आगे मैं जातियों को वश में कर दूंगा और राजाओं की कमर ढीली कर दूंगा। उसके सामने 2 पल्लों वाले फाटक खोल दूंगा और वे फाटक बंद न किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा कर दूंगा। मैं पीतल के फाटक तोड़ दूंगा और लोहे की सलाखों को काट डालूंगा, और मैं तुझे अंधकार के खजाने और गुप्त स्थानों में छिपी हुई धन संपत्तियां दूंगा, ताकि तू जान ले कि मैं यहोवा जो तुझे तेरे नाम से बुलाता हूँ इसराइल का परमेश्वर हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इसराइल के कारण मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है। मैंने तुझे उपाधि दी है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता था। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। मैंने तुझे कमर बांधी, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता था, ताकि लोग सूर्योदय से लेकर पश्चिम तक जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। यशाया 84:43-45:6।
कुरुश मसीह का प्रतिरूप था, क्योंकि वो प्रभु का अभिषिक्त था और परमेश्वर का चरवाहा कहलाया, जो यरूशलेम का निर्माण करता है और मंदिर की नींव रखता है। वही वो है जो बंद द्वारों को खोलता है, जैसे मसीह वही है जो खोलते हैं और जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, और बंद करते हैं और जिसे कोई मनुष्य खोल नहीं कर सकता। और कुरुश को अंधकार के खजाने और गुप्त स्थानों के छिपे धन दिए गए हैं। कुरुश सुधारवादी आंदोलनों की रेखा पर कई मार्ग चिन्हों की पूर्ति करता है। वह अंत के समय को चिन्हित करता है, जब पहला स्वर्गदूत आता है, जब दानियल की पुस्तक की मुहर खोली जाती है और तब ज्ञान में वृद्धि होती है, जो अंधकार के खजाने और गुप्त स्थानों के छिपे धन से आती है। वे अंधकार के खजाने और गुप्त स्थानों के छिपे धन उस आधार का निर्माण करते हैं जो बनाया जाता है, और उस मंदिर का जिसे रखा जाना है। मसीह है जिनका प्रतिरूप कुरुश था, प्रभु के अभिषिक्त है, जैसे मसीह का उनके बपतिस्मा के समय अभिषेक हुआ था। इसलिए कुरुश केवल पहले स्वर्गदूत के आगमन का चिन्ह नहीं है, वो दूसरा स्वर्गदूत भी है, जो पहले स्वर्गदूत को तब सामर्थ देता है जब पहला स्वर्गदूत उतरता है, जैसे मसीह के अभिषेक के समय पवित्र आत्मा उतरा था। 22 अक्टूबर 1844 को मसीह ने महापवित्र स्थान का द्वार या फाटक खोल दिया, जो पहले से बंद था। कुरुश तीसरे स्वर्गदूत के आगमन को भी चिन्हित करता है। साइरस पहला स्वर्गदूत है, और पहला स्वर्गदूत तीनों स्वर्गदूतों के सभी तत्वों को समेटे हुए है। साइरस 1799 में अंत का समय है, जब पहला स्वर्गदूत आया। साइरस अगर अगस्त 1840 का प्रतिनिधित्व करता है, जब पहले स्वर्गदूत के संदेश को सशक्त किया गया, अभिषिक्त किया गया, वो नींव रखने के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका प्रतिनिधित्व मई 1842 में 1843 के चार्ट के निर्माण द्वारा किया गया। वो मंदिर के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि 19 अप्रैल 1844 को पहली निराशा के समय दो वर्ग अलग कर दिए गए थे, और वो 22 अक्टूबर 1844 की महान निराशा में दूसरे विभाजन का भी प्रतिनिधित्व करता है। मिलराइटों के सुधार आंदोलन के सभी मार्ग चिन्हों का पूर्व रूप कुरूश में मिलता है, और इसलिए वे मार्ग चिन्ह 144,000 के आंदोलन के मार्ग चिन्हों का भी पूर्व रूप है। मिलराइटस आंदोलन से पहले वे चिन्ह प्रकट हुए जिनके बारे में मसी ने कहा था कि वे मिलराइटों के इतिहास से पूर्व होंगे।
भविष्यवाणी न केवल मसीह के आगमन की रीति और उद्देश्य की पूर्व सूचना देती है, बल्कि ऐसे चिन्ह भी प्रस्तुत करती है जिनसे लोग जान सकें कि उसका समय निकट है। यीशु ने कहा, सूर्य और तारों में चिन्ह होंगे, लूका 21:25। सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश के तारे गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी, और तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते हुए देखेंगे। मरकुस 13:22-26। दृष्टा ने दूसरे आगमन से पहले होने वाले चिन्हों में से पहले चिन्ह का इस प्रकार वर्णन किया, एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य ऊन के टाट के समान काला हो गया और चंद्रमा रक्त के समान हो गया। प्रकाशित वाक्य 6:12। इन चिन्हों को 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से पहले देखा गया था। इस भविष्यवाणी की पूर्ति में सन 1755 में अब तक दर्ज किया गया सबसे भयानक भूकंप आया, द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 350।
दूसरे आगमन की घोषणा करने वाले चिन्ह 1798 से कुछ पहले यानी 1755 में शुरू हुए। 1798 आध्यात्मिक बाबुल में आध्यात्मिक इसराइल की बंधुआई का समापन था। सिस्टर व्हाइट सिखाती है कि इसका प्रतिरूप शाब्दिक बाबुल में शाब्दिक इसराइल की शाब्दिक बंधुआई थी, जो बंधुआई के 70 वर्षों के अंत में समाप्त हुई जब साइरस खुले फाटकों से भीतर आया, बाबुल पर अधिकार कर लिया और बेलशज्जर को मार डाला।
आज परमेश्वर की कलीसिया खोई हुई मानव जाति के उद्धार के लिए दिव्य योजना को पूर्णता तक आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। अनेक शताब्दियों तक परमेश्वर की प्रजा ने अपनी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध सहा। सुसमाचार का अपने शुद्ध रूप में प्रचार करना निषिद्ध था, और जो लोग मनुष्यों की आज्ञाओं की अवहेलना करने का साहस करते थे उन पर कठोरतम दंड लगाए जाते थे। परिणामस्वरूप प्रभु की महान नैतिक दाख की बारी लगभग पूरी तरह खाली पड़ी रही। लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रकाश से वंचित कर दिया गया। भ्रांति और अंधविश्वास का अंधकार सच्चे धर्म के ज्ञान को मिटा देने की धमकी दे रहा था। पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया इस निर्दय उत्पीड़न की लंबी अवधि के दौरान उतनी ही सचमुच बंधुआई में थी जितनी निर्वासन के काल में बाबेल में इसराइल की संतानें बंधुआई में हथीं। भविष्यद्वक्ता और राजा 17:2।
बाबुल में 70 वर्षों की समाप्ति 1798 का प्रतीक थी, और 1798 से पहले ऐसे चिन्ह प्रकट हुए थे जो ये घोषित करते थे कि मसीह का पुनरागमन आसन्न है।
बाबुल के दीवारों के सामने कुरूश के सेना का आगमन यहूदियों के लिए इस बात का संकेत था कि उनकी बंधुआई से मुक्ति निकट आ रही थी। कुरूश के जन्म से भी एक शताब्दी से अधिक पहले दैवीय प्रेरणा ने उसका नाम लेकर उल्लेख किया था, और ये भी लिखवा दिया था कि वो किस प्रकार बाबुल नगर को अचानक अपने अधिकार में लेगा और बंधुआई में पड़े लोगों की रिहाई के लिए मार्ग तैयार करेगा। भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं 5:5-7।
कुरूश ने 1799 से पूर्व होने वाले चिन्हों का भी प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इतिहासकार दार्यावेश और कुरूश के शासन के विषय में कुछ अस्पष्ट है, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। मादी फारसी साम्राज्य बाबुल के साम्राज्य के पश्चात आया, और मादी फारस का पहला राजा दार्यावेश था, यद्यपि उसका भांजा कुरूश वह सेनापति था जिसने बाबुल पर अधिकार किया। बेलशज्जर के अंतिम भोज की रात कुरूश और दार्यावेश दोनों 70 वर्षीय बंधुआई के अंत के समय का प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, जो 1799 में अंत के समय का प्रतिनिधित्व करता है और जो 1919 में भी अंत के समय का प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। मूसा के इतिहास में अंत का समय हारून और मूसा के जन्मों से चिह्नित था, जो एक दूसरे से 3 वर्ष के अंतर पर हुए। वो इतिहास मसीहे के इतिहास का सबसे पूर्ण प्रतीक था और उस इतिहास में अंत का समय यूहन्ना के जन्म से और 6 महीने बाद उसके चचेरे भाई यीशु के जन्म से चिह्नित हुआ। अंत के समय के 2 मार्ग चिन्ह होते हैं और दारियस तथा कुरुश दोनों 70 वर्षों की बंधुआई के अंत को चिह्नित करते हैं, जो 1260 वर्षों की बंधुआई के अंत का प्रतीक था। 1798 में पापसी पशु को लगे घातक घाव के अगले ही वर्ष उस व्यक्ति की मृत्यु हुई जो उस पशु पर सवार था और उस पर राज्य करता था। 1998 से नया तरह का भाग था और बुश प्रथम दोनों राष्ट्रपति थे। कुरुश उन चिन्हों को चिह्नित करता है जो आने वाले अंत के समय की घोषणा करते हैं और वो अंत के समय को भी चिह्नित करता है। वो ज्ञान की बढ़ोतरी को चिह्नित करता है और जब एक स्वर्गदूत उतरता है तब पहले संदेश के सशक्त होने को और वो उस कार्य को भी चिह्नित करता है जिसे तब नींव डालने के लिए हाथ में लिया जाता है, मंदिर के निर्माण का कार्य, और तीसरे स्वर्गदूत के आगमन को जब वाचा का दूत अचानक अपने मंदिर में आ पहुंचता है।
फारस के राजा कुरेश के 3रे वर्ष में दानियल को, जिसका नाम बेल्तशज्जर कहलाता था, एक बात प्रकट की गई और वो बात सच्ची थी, पर नियत समय लंबा था और उसने उस बात को समझा और उस दर्शन की समझ भी पाई। उन दिनों मैं दानियल 3 पूरे सप्ताह शोक करता रहा। मैंने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, न मांस और न दाखरस मेरे मुंह में आए, न मैंने तन पर तेल लगाया जब तक 3 पूरे सप्ताह पूरे न हो गए। और पहले महीने के 24वें दिन जब मैं उस बड़ी नदी के किनारे था जिसका नाम हिद्देकेल है। दानियल 10:1-4।
कुरुश और बेल्तशज्जर के प्रतीक अंतिम दिनों में एक विशिष्ट भविष्य सूचक इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेल्तशज्जर का प्रतीक हमें ये बताता है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वे 144,000 हैं, जो वाचा के लोगों की अंतिम पीढ़ी है। उन्हें उस भविष्य सूचक इतिहास में रखा गया है जिसका प्रतिनिधित्व कुरुश करता है, जो 37 साल 1989 और 11 सितंबर 2001 से पहले के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कुरुश उन सभी मार्ग चिन्हों का प्रतिनिधित्व करता है। वह 18 जुलाई 2020 की निराशा का और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का भी प्रतिनिधित्व करता है। दानियल के अंतिम दर्शन को भविष्य सूचक दृष्टि से कहां रखा गया है, ये निर्धारित करने की कुंजी ये जानने में है कि दानियल क्या जानता है। पद 1 में दानियल बेल्तशाजर को बात और दर्शन दोनों की समझ है। बात हिब्रू शब्द डबर है, जिसका अर्थ शब्द है, और इसे गब्रियल ने 2520 वर्षों 7 समय के छाजौन दर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया है। पद 1 का दर्शन, जिसे दानियल समझता है, 2300 वर्षों का मारेह दर्शन है। अंतिम दिनों में परमेश्वर की वाचा के लोगों ने 1979 में अंत के समय पर 7 समय को नहीं समझा। उन्होंने 11 सितंबर 2001 के बाद तक 7 समय को नहीं समझा। इसलिए दानियल, जो अंतिम भविष्यवाणी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, बात और दर्शन दोनों को समझता है। अतः वो 11 सितंबर 2001 के बाद साइरस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भविष्यवाणी सुधार आंदोलन के समय में ही होना चाहिए। दानियल को 21 दिनों के शोक की अवधि में होने के रूप में पहचाना गया है। शोक के उन दिनों में दानियल ने उस वस्तु को समझा और उसे दर्शन का भी बोध हुआ। वस्तु द्वारा निरूपित सत्य शोक के दिनों में दानियल पर प्रकट किया गया। परमेश्वर की प्रजा को मध्यरात्रि के पुकार से ठीक पहले सुधार रेखाओं में शोक करते हुए दर्शाया गया है। इस शोक को विजयी प्रवेश से ठीक पहले लाजर के लिए मार्था और मरियम के विलाप करने के द्वारा निरूपित किया गया है। मिलरवादी इतिहास में प्रथम निराशा के पश्चात जो हताशा थी और जिसे यिर्मयाह ने व्यक्त किया, उसके द्वारा भी इसे चित्रित किया गया था।
तेरे वचन मिले और मैंने उन्हें खा लिया, और तेरा वचन मेरे लिए मेरे हृदय का आनंद और हर्ष बना, क्योंकि मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ, हे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर। मैं ठट्ठा करने वालों की सभा में नहीं बैठा, न मैंने आनंद किया, मैं तेरे हाथ के कारण अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे रोष से भर दिया। मेरा दुख सदा क्यों बना रहता है और मेरा घाव असाध्य क्यों है जो चंगा होने से इनकार करता है? क्या तू मेरे लिए सर्वथा झूठा ठहरेगा और ऐसे जल के समान जो सूख जाते हैं? यिर्मयाह 15:16 ता है।
यिर्मयाह ने दो गवाहों की मृत्यु पर आनंद नहीं किया, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में सदोम और मिस्र के नागरिकों ने किया था। आनंदित न होना शोक करना है। बेलतशस्सर का शोक उस शोक की पहचान कराता है जो दो गवाहों की मृत्यु से संबंधित है। 18 जुलाई 2020 और 3 नवंबर 2020 को पृथ्वी के पशु के सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह और रिपब्लिकन सिंह, ये दो गवाह सदोम और मिस्र की गलियों में मार डाले गए, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके शिष्यों ने शोक करना शुरू किया। वे दो गवाह प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में मूसा और इलिया के रूप में दर्शाए गए थे। शास्त्रों में मसीह को मिकाएल के रूप में 5 बार संदर्भित किया गया है, 3 बार दानियल की पुस्तक में, 1 बार यहूदा की पत्री में और 1 बार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। जिस 10वें अध्याय पर हम अभी विचार कर रहे हैं उसमें मिकाएल का 2 बार उल्लेख है, पद 13 और 21 में, और फिर 12वें अध्याय के पहले पद में। उसकी पहचान प्रकाशित वाक्य 12:7 में की गई है। यहूदा में मिकाएल को मूसा को पुनर्जीवित करने वाला बताया गया है, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में सड़कर मृत पड़े गवाहों में से एक है।
इसलिए मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ, यद्यपि तुम ये बात पहले से जानते हो कि प्रभु ने लोगों को मिस्र देश से बचाकर निकाला, परंतु बाद में जो विश्वास नहीं करते थे उनका नाश किया, और वे स्वर्गदूत जिन्होंने अपनी पहली अवस्था को नहीं बनाए रखा पर अपने निवास को छोड़ दिया, उन्हें उसने महान दिन के न्याय तक अंधकार के अधीन अनंत बंधनों में रख छोड़ा है, जैसे सोदोम और गोमोरा और उनके आसपास के नगर, जिन्होंने इसी रीति से अपने आप को व्यभिचार में सौंप दिया और पराई देह के पीछे चल पड़े, वे अनंत आग के दंड भुगतते हुए उदाहरण के लिए ठहराए गए हैं। इसी प्रकार ये अपवित्र स्वप्न देखने वाले भी शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुत्व का तिरस्कार करते और महिमाओं की निंदा करते हैं। तो भी प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने, जब वो शैतान के साथ मूसा के शरीर के विषय में वाद विवाद कर रहा था, तो उसके विरुद्ध निंदात्मक दोषारोपण करने का साहस न किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहूदा 5:9।
यहूदा की पुस्तक में सदोम और मिस्र दोनों के संदर्भ में, जो उस महान नगर का प्रतीक है जहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में मूसा और एलिया मारे जाते हैं, मिखाइल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मसीह मूसा के शरीर को पुनर्जीवित करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में मूसा और एलिया 3 और आधे सांकेतिक दिन तक मृत रहे, और बेलतशस्सर व्यूह के दिन तब समाप्त होते हैं जब मिखाइल स्वर्ग से उतरता है। पंक्ति पर पंक्ति दानियल अध्याय 10 के पद 1 से 4 उस शोक की अवधि की पहचान करते हैं, जो तब समाप्त होती है जब मिखाइल दो गवाहों को पुनर्जीवित करता है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
परमपिता ने मूसा और एलिया को चुना कि वे मसीह के पास उसके दूत बनकर जाएं, स्वर्ग के प्रकाश से उसे महिमा मंडित करें और उसकी आने वाली पीड़ा के विषय में उससे संगति करें, क्योंकि वे मनुष्यों के रूप में पृथ्वी पर जी चुके थे। उन्होंने मानवीय शोक और दुख का अनुभव किया था और उसके सांसारिक जीवन में यीशु की परीक्षा से सहानुभूति रख सकते थे। एलिया ने इसराइल के भविष्यद्वक्ता के रूप में मसीह का प्रतिनिधित्व किया था और उसका कार्य कुछ हद तक उद्धारकर्ता के कार्य के समान था, और मूसा ने इसराइल के नेता के रूप में मसीह के स्थान पर खड़े रहे, उससे संगति करते रहे और उसके निर्देशों का पालन करते रहे। इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर इकट्ठी हुई सभी स्वर्गीय सेनाओं में से यही दोनों परमेश्वर के पुत्र की सेवा करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त थे। जब मूसा इसराइलियों के अविश्वास पर क्रोधित होकर रोष में चट्टान पर प्रहार करके उन्हें वो पानी दे बैठा जिसकी वे मांग कर रहे थे, तो उसने महिमा अपने लिए ले ली, क्योंकि उसका मन इसराइलियों की कृतज्ञता और हठधर्मिता में इतना उलझ गया था कि वो परमेश्वर का आदर करने और उसके नाम को महान करने में चूक गया, उस कार्य को करते समय जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी। सर्वशक्तिमान की ये योजना थी कि वो बार बार इसराइलियों को तंग परिस्थितियों में लाए और फिर उनकी बड़ी आवश्यकता में अपनी सामर्थ्य से उन्हें छुड़ाए, ताकि वे उनके प्रति उसकी विशेष कृपा को पहचाने और उसके नाम की महिमा करें। परंतु मूसा ने अपने हृदय के स्वाभाविक आवेगों के आगे झुककर परमेश्वर को जो सम्मान मिलना चाहिए था उसे अपने लिए ले लिया, शैतान के वश में आ गया और उसे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। यदि मूसा दृढ़ बना रहता तो प्रभु उसे प्रतिज्ञात देश में ले जाता और तब उसे मृत्यु देखे बिना स्वर्ग में उठा लेता। ऐसा हुआ कि मूसा मृत्यु से होकर गुजरे, परंतु परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से उतरा और उसके शरीर में सड़न आने से पहले ही उसे पुनर्जीवित कर दिया। यद्यपि शैतान ने मूसा के शरीर के लिए मीकाएल से विवाद किया और उसे अपना उचित शिकार बताकर दावा किया, फिर भी वो परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध विजयी न हो सका और मूसा पुनर्जीवित और महिमामय शरीर के साथ स्वर्ग के प्रांगणों में ले जाया गया। और अब वो उन दो सम्मानित व्यक्तियों में से एक था जिन्हें पिता ने अपने पुत्र की सेवा में उपस्थित रहने के लिए नियुक्त किया था। अपने को नींद में इस प्रकार डूब जाने दिया कि शिष्य स्वर्गीय दूतों और महिमित उद्धारकर्ता के बीच का संवाद खो बैठे थे, परंतु जैसे ही वे गहन निद्रा से अचानक जागे और अपने सामने उस उदात्त दर्शन को देखा, वे परमानंद और विस्मय से भर उठे। जब वे अपने प्रिय गुरु के दीप्तिमान रूप को देखते हैं तो वे अपने हाथों से अपनी आंखें ढकने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि अन्यथा वे उस अवर्णनीय महिमा को जो उनके व्यक्तित्व को आच्छादित किए हुए है और जो सूर्य के समान प्रकाश की किरणें बिखेरती है सहन नहीं कर सकते। कुछ क्षणों के लिए शिष्य अपनी आंखों के सामने अपने प्रभु को महिमित और उन्नत देखते हैं और उन दीप्तिमान प्राणियों द्वारा सम्मानित जिन्हें वे परमेश्वर की कृपा प्राप्त जन के रूप में पहचानते हैं। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी खंड 2 332-303।